अध्याय चार, रूप विज्ञान। रूप का स्वरूप। रूप विज्ञान के अंतर्गत रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। रूप क्या है? इस प्रश्न पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को रूप कहते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि हम मुख से जो भी ध्वनि निकालते हैं वे सभी सार्थक नहीं होती। जैसे यदि हम र य न व अड़ क स म उ ए आदि ध्वनियों का उच्चारण मुख से करें तो ये ध्वनियाँ सार्थक नहीं मानी जाएंगी। हाँ, यदि हम इनको समन्वित करके राम रावण बाण मारना आदि कहें तो ये सार्थक ध्वनियाँ हो जाएंगी और इन सार्थक ध्वनियों के कुछ रूप बन जाएंगे। अभी ये रूप किसी एक विचार मनोभाव या इच्छा को व्यक्त नहीं कर पाएंगे जब तक इनको विभक्ति प्रत्यय या परसर्गों द्वारा संयुक्त करके किसी वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य नहीं बनाया जाएगा। इन सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को जब विभक्तियों प्रत्ययों या परसर्गों से संयुक्त करके व्यवस्थित ढंग से एक वाक्य में इस तरह व्यक्त किया जाए कि राम ने रावण को बाण से मारा, तब ये ध्वनियाँ वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य रूप ग्रहण कर लेंगी। इस प्रकार रूप से तात्पर्य उन सार्थक ध्वनियों के समुच्चय से है जो किसी एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए तथा किसी एक विचार या भाव की व्यंजना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। रूप के भेद। जब सार्थक ध्वनियाँ एकत्र होकर किसी एक अर्थ या पदार्थ का बोध कराने के लिए व्यक्त होती हैं तब उनके द्वारा जो रूप बनते हैं उन्हें प्रायः शब्द के नाम से अभिहित किया जाता है। इस दृष्टि से राम रावण बाण मारना आदि शब्द हैं। इसके अतिरिक्त जब ये सार्थक ध्वनियाँ विभिन्न विभक्तियों प्रत्ययों या परसर्गों का आश्रय ग्रहण करके किसी एक विचार मनोभाव आदि को व्यक्त करने के लिए किसी एक वाक्य में प्रयुक्त होती हैं तब इन ध्वनियों के जो रूप बनते हैं उन्हें पद के नाम से पुकारा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम शब्द के साथ ने विभक्ति, रावण शब्द के साथ को विभक्ति, बाण के साथ से विभक्ति और मार शब्द के साथ आ प्रत्यय जोड़ा गया है और इनके योग से उक्त सभी पद शब्द पद बनकर वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता धारण कर सके हैं। अतः रूप के दो भेद होते हैं, शब्द और पद। जहाँ पर सर्ग या विभक्ति का योग नहीं रहता वहाँ ध्वनि समूह शब्द कहलाता है और जहाँ पर सर्ग या विभक्ति का योग रहता है वहाँ ध्वनि समूह पद कहलाता है। शब्द का स्वरूप। प्रायः उस ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं इसमें भावबोधन अथवा अर्थ वहन करने की क्षमता होती है। इसी कारण महर्षि पतंजलि ने शब्द के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जिसके उच्चारण से सासना लांगुल ककुद खुर विषाण आदि से युक्त वस्तु का बोध होता है उसे शब्द कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि अर्थ को व्यक्त करने के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए भर्तृहरि ने भी लिखा है कि शब्द के द्वारा ही असांख्यीय षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद स्वरों का यथार्थ विवेचन किया जाता है और समाख्येय गव आदि अर्थों का भी शब्द द्वारा ही बोध होता है। अतः संपूर्ण भाव की जानकारी एवं अर्थों के बोध का साधन शब्द ही होता है। इतना ही नहीं, भर्तृहरि ने तो यहाँ तक लिखा है कि संसार में जितना भी लोक व्यवहार है सब शब्द से के ही अधीन है। इसीलिए संसार में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसका बोध शब्द के बिना हो, क्योंकि शब्द से ही संपूर्ण ज्ञान भाषित होते हैं। शब्द को भावबोधक एवं अर्थवाहक केवल भारतीय विद्वान ही नहीं मानते अपितु पाश्चात्य दार्शनिक एवं विद्वान भी शब्द के बारे में ऐसा ही विचार करते हैं। जैसे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने शब्द या वाणी संबंधी विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि संपूर्ण शब्द या वाणी से भावों विचारों या अर्थों का ही बोध होता है, क्योंकि शब्द प्रायः शब्द का प्रयोग भाव प्रेषणीयता में सहायता पहुंचाने के लिए अथवा विचारों के संचार में सहायता देने के लिए ही किया जाता है। इसी मत का समर्थन यूनान के स्टाइक दार्शनिकों में भी पाया जाता है, क्योंकि ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार आँखों से संपूर्ण पदार्थ देखे जाते हैं उसी तरह शब्दों से संपूर्ण अर्थों का बोध होता है। इसी तथ्य को ऑगडेन एवं रिचर्ड्स ने इस प्रकार प्रकट किया है कि इस बात पर विशेष महत्व देना आवश्यक नहीं है कि कुत्ता शब्द तथा गनियों में घूमने वाला या विशेष प्राणी में कोई सीधा संबंध नहीं है। इनमें संबंध है तो केवल यही कि जब हम उस जानवर विशेष का बोध कराना चाहते हैं तब उस कुत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह शब्द पदार्थ या अर्थ का बोध कराया करता है, उसमें अर्थवहन की पूर्ण क्षमता होती है और यह भाव या विचारों को व्यक्त करने अथवा समझाने में पूर्ण समर्थ होता है। शब्द के भेद। शब्द को ब्रह्म की तरह अनंत, अक्षर, असीम एवं अजन्मा माना गया है। अतः जिस प्रकार ब्रह्म को अनेक रूपाय कहकर विविध रूप माना जाता है, उसी प्रकार शब्द के भी अनेक रूप स्वीकार किए जाते हैं। उन रूपों को विद्वानों ने कतिपय भेदों में विभाजित करके उनको समझने एवं जानने के लिए सुगम बना दिया है। इसी दृष्टि से निरुक्तकार यास्क मुनि ने शब्द का विभाजन करते हुए उसके चार भेद स्वीकार किए: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इनमें से नाम से अभिप्राय संज्ञा शब्द से है, जैसे बालक, राम, लड़की, सीता, बकरी, गाय, पशु आदि। आख्यात से अभिप्राय क्रिया शब्दों से है, जैसे करना, खाना, पीना, सोना, आना जाना आदि। उपसर्ग से अभिप्राय उन शब्दों से है जो संज्ञा नाम या क्रिया आख्यात के आरंभ में संबद्ध होकर विशिष्ट अर्थों का बोध कराया करते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, निर, निस, दुर, दस, वि, आ, सम आदि। ये सब री धातु से बनी क्रिया हार से संबद्ध होते हैं, तो विहार, संहार, आहार, अनुहार, प्रहार, निराहार, उपहार आदि अनेक अर्थकवाची शब्दों का निर्माण कर डालते हैं। निपात से तात्पर्य उन शब्दों से है जो किसी भी अन्य अर्थ के साथ तादात्म्य करके अपना अन्वय बोध कराने में समर्थ नहीं होता। यास्क मुनि ने निपात के तीन भेद स्वीकार किए। पहला, उपमार्थक, जो साधारणतया उपमा का अर्थ बताया करते हैं, जैसे संस्कृत के इव, न, चित और नु। दूसरा, कर्मोपसंग्रहार्थक, जो कर्म या अर्थ के उपसंग्राहक होते हैं, अर्थात जो समुच्चयवाचक या संयोजक होते हैं, जैसे संस्कृत के च, आ, वा आदि, ऐसे ही निपात हैं। तीसरा, पादप पूरक, जो अर्थ को पूर्ण होने पर भी गद्य प्रश्नों में वाक्य मूर्ति के लिए अथवा पद्य ग्रंथों में पाद पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये निपात प्रायः निरर्थक होते हैं, जैसे संस्कृत में कम, इम, इत, उ आदि। न्यायिकों ने शब्द के तीन भेद स्वीकार किए: प्रकृति, प्रत्यय और निपात। प्रकृति से तात्पर्य उस शब्द से है जो किसी अर्थ की प्रतीति कराने हेतु हो तथा उसके द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का बोध कराने में निश्चित हो, जैसे गुरु, स्वामी, भला आदि। प्रत्यय से तात्पर्य उन शब्दों से है जो स्वयं तो अर्थ का बोध कराने में असमर्थ हो किंतु किसी प्रकृति से युक्त होकर अर्थ का बोध करा सकें, जैसे संस्कृत की सुप, तिंग, कृदंत और तद्धति, चार प्रकार की प्रत्यय होती है। उक्त शब्दों में भी ता, त्व, आई प्रत्यय लगने से क्रमशः गुरुता, स्वामित्व, भलाई शब्द बन जाते हैं, विशेष अर्थ के द्योतक होते हैं, जबकि ता, त्व एवं आई शब्द पृथक रहने पर पूर्णतया निरर्थक हैं। निपातों का उल्लेख अभी ऊपर किया ही जा चुका है। पाणिनि ने शब्द के चार भेद किए हैं: पहला प्रतिपादक, दूसरा धातु, तीसरा सुबंत और चौथा तिङन्त। राम, लता, श्याम, विद्या आदि प्रत्ययों के बिना ही अर्थबोधक शब्द प्रतिपदी कहलाते हैं। क्रियावाचक भू आदि शब्द धातु कहलाते हैं। सु, औ, चस आदि विभक्तियां सुबंत कहलाती हैं। तिप, तस, जी आदि शब्द जो धातु के आगे लगकर अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें तिङन्त कहते हैं, जैसे भवति, भवतः, भवन्ति आदि। अंग्रेजी के व्याकरण की दृष्टि से शब्द के आठ भेद होते हैं। पहला संज्ञा, जैसे राम, मोहन, लड़का आदि। दूसरा सर्वनाम, जैसे मैं, वह, तू। तीसरा विशेषण, यानी अच्छा, कम, बुरा, भला आदि। चौथा क्रिया, जैसे सोना, उठना, आना जाना इत्यादि। पांचवा क्रिया विशेषण, जैसे आगे, पीछे, जल्दी। छठा संबंध सूचक अव्यय, जैसे को, से, के इत्यादि। सातवां समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे और, लेकिन अथवा। और आठवां विस्मय आदि बोधक आ, ओ, अरे। इत्यादि। रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके वे रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान आदि। जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सकें वे यौगिक शब्द होते हैं। इन्हें यौगिक शब्दों के अंतर्गत ही सामासिक शब्द आ जाते हैं, जैसे झटपट, घुड़साल, पाठशाला, विद्यालय इत्यादि। जिन शब्दों के व्युत्पत्ति की दृष्टि से तो सार्थक खंड न हो सके किंतु जो विशेष अर्थ के द्योतक होने योगरूण शब्द कहते हैं, जैसे जलद, पंकज, वारिध आदि। इनमें जलद का व्युत्पत्ति परक अर्थ है पानी देने वाला, किंतु यह शब्द केवल बादल का विशेष अर्थ देता है। ऐसे ही पंकज का व्युत्पत्ति परक अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला, किंतु इसका विशेष अर्थ कमल हो गया है इत्यादि। रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जिस शब्द में कोई विकार होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कों आदि। जिस शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे परंतु, अचानक, हाय, बहुधा, बिना, क्योंकि आदि। इस दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सभी विकारी शब्द होते हैं, और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, अव्यय सभी अविकारी शब्द होते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। जो शब्द साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। ये वाचक शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला जातिवाचक, जैसे आम, लड़की, पशु आदि। दूसरा गुणवाचक, जैसे पका, हरा, पीला, काला इत्यादि। तीसरा क्रियावाचक, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना इत्यादि। और चौथा द्रव्यवाचक, जैसे चंद्रमा, सूर्य, मोहन, भारत, हिमालय, गंगा, दिल्ली इत्यादि। जो शब्द मुख्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को लक्षित करता है उसे लक्षक शब्द कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए तू गधा है, तो यहाँ गधा शब्द पशु विशेष का द्योतक न होकर उस व्यक्ति की मूर्खता, नासमझी आदि का द्योतक है। जो शब्द मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी व्यंग्यार्थ का बोधक होता है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। जैसे कोई कहे कि इस खस की शीतल रावटी में जेठ की दोपहरी भी माँ से ठंडी लगती है, उसी रावटी में वह विरहणी नायिका गर्मी से उबल रही है। यहाँ व्यंग्यार्थ यह है कि कोई द्वितीय नायक से कह रही है कि तुम कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे प्रेम में नायिका की दशा कितनी शोचनीय है, तुम उस पर तरस खाओ और इतने निष्ठुर मत बनो। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर शब्द के पांच भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, द्विज या संकर और आगत। शुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, कृपा, पृथ्वी, क्षमा, दारिद्र आदि। तत्सम शब्दों से बने हुए विकृत शब्दों को तद्भव कहते हैं, जैसे आग, किरण, पुहुमि, छिमा, दरिद्र आदि। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति अज्ञात होती है और जो लोग भाषाओं में प्रचलित रहते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे घोटू, हिंसिया, तेंदुआ आदि। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें द्विज या संकर शब्द कहते हैं, जैसे अमन सभा। यहाँ अमन अरबी फारसी का शब्द है और सभा संस्कृत का शब्द है। रेलगाड़ी, यहाँ रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। अजायब घर, यहाँ अजायब शब्द फारसी का और घर हिंदी का शब्द है। अतः ये सभी शब्द द्विज या संकर हैं। इसके अतिरिक्त जो शब्द विदेशी भाषाओं के होते हैं और किसी भाषा में आकर प्रचलित रहते हैं वे आगत कहलाते हैं, जैसे कोट, पैंट, टिकट, अचार, बाल्टी, अलमारी, इंस्पेक्टर, आया, गरीब, आका, तनख्वाह, आमदनी आदि शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जबकि ये सभी विदेशी भाषाओं के हैं, अतः ये आगत शब्द हैं। अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर शब्द के दो भेद होते हैं, एकार्थकवाची और अनेकार्थकवाची। जो शब्द एक ही अर्थ का द्योतक होता है उसे एकार्थकवाची कहते हैं, जैसे हाथ, आँख, नाक, कान, खाट आदि। जो शब्द अनेक अर्थ के द्योतक होते हैं वे अनेकार्थकवाची शब्द होते हैं, जैसे सारंग, शब्द मोर, हिरण, चातक, हंस, खंजन, कोयल, भौरा, कमल, बादल, हाथी, शिव, कामदेव आदि अनेक अर्थ का द्योतक होता है। ऐसे ही ईश शब्द पति, स्वामी, राजा, ईश्वर, शंकर आदि का द्योतक होता है। ऐसे ही कर शब्द हाथ, सूंड, टैक्स आदि का द्योतक होता है। इसी प्रकार केसर शब्द जाफरान, सिंह की गर्दन के बाल, अयाल, नाग केसर, मौलसरी, पुन्नाग, सोना, कसीज आदि अनेक अर्थों का द्योतक होता है। अतः ये सभी शब्द अनेकार्थक वाची कहलाते हैं। पद का स्वरूप, पहले वैयाकरणों ने शब्द को पद नाम से अभिहित किया है, इसी कारण भर्तृहरि ने पद विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्राचीन आचार्यों का मत उद्धृत करते हुए लिखा है कि कोई आचार्य पद के चार भेद करता है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तथा कोई आचार्य कर्म प्रवचनीय की पृथक सत्ता मानकर पद के पांच भेद करता है। इस कथन से स्पष्ट है कि भर्तृहरि ने जिन पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों को उद्धृत किया है वे शब्द को ही पद मानते हैं, परंतु शब्द और पद में पर्याप्त अंतर होता है। शब्द पूर्णतया स्वतंत्र होता है, जबकि पद वाक्य के अनुकूल होने के कारण परतंत्र होता है। शब्द के साथ विभक्ति एवं परसर्गों का योग नहीं होता, जबकि पद का निर्माण ही विभक्ति एवं परसर्गों के द्वारा होता है, और जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए सर्वथा अयोग्य होता है, जबकि पद में वाक्य अंतर्गत प्रयुक्त होने की पूर्ण योग्यता होती है। हाथी ने सरोवर में कमलों को तोड़ा, इस वाक्य में उक्त पद ही जब पद बन गए हैं तब उनमें वाक्य निर्माण करने की योग्यता आई है। इससे सिद्ध है कि शब्द में भाव बोधन एवं अर्थ वहन करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि यह क्षमता किसी शब्द को तभी प्राप्त होती है जब वह पद का रूप ग्रहण करता है, अथवा कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर तभी अर्थबोध एवं भाव वहन में समर्थ होता है जब वह विभक्ति प्रत्यय या परसर्ग का संयोग प्राप्त करके पद बन जाता है। इस दृष्टि से पद शब्द से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कोई शब्द पद नहीं बनता तब तक वह भाव बोधन एवं अर्थ संवहन में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। अतः शब्द के उस रूप को पद कहते हैं जो विभक्ति प्रत्यय या परसर्ग का संयोग ग्रहण कर तथा किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थबोध एवं भावबोध में सर्वथा समर्थ होता है। इस दृष्टि से हाथी, सरोवर, कमल तथा तोड़ना केवल शब्द हैं, जबकि हाथी ने सरोवर में कमल को तोड़ा ये चारों पद हैं, क्योंकि यहाँ ने, में और को विभक्तियां तथा आ प्रत्यय का संयोग हुआ है और इन विभक्तियों एवं प्रत्यय ने उक्त शब्दों को पद की योग्यता प्रदान की है। पद के भेद, विद्वानों ने शब्द की तरह पद के भी अनेक भेद प्रभेद किए हैं, परंतु भर्तृहरि ने वार्ताक्ष और दुम्भरायण नामक दो आचार्यों का उल्लेख करते हुए बताया है कि वे पद के दो भेद मानते थे। उनका मत है कि बुद्धि में अखंड वाक्य सर्वदा विद्यमान रहता है, उसी का प्रतिमा रूपी अर्थ संयोग होता है। इनमें से नाम को अखंड वाक्य रूपी पद, आख्यात को प्रतिभा रूपी अर्थ कह सकते हैं, और पद के दो ही भेद होते हैं, नाम और आख्यात। आचार्य पाणिनि ने भी पद के दो भेद किए स्वीकार किए हैं, सुबंत और तिगंत। सुबंत पद के अंतर्गत संपूर्ण नाम अथवा संज्ञा संबंधी पद आ जाते हैं और तिगंत पद के अंतर्गत संपूर्ण आख्यात या क्रिया संबंधी पद आ जाते हैं। संज्ञा या नाम का ही संबंध सर्वनाम और विशेषण से होता है तथा क्रिया का आख्यात का संबंध उपसर्ग और निपात से होता है, क्योंकि उपसर्ग क्रिया के विशेषक होते हैं और निपात पाद पूरक होते हैं। इस प्रकार उपसर्ग और निपात दो पद होते नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं पदों में लगते हुए हैं या पादपूर्ति के लिए आते हैं। प्रत्यय विभक्ति या परसर्गों को पद लीजिए इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये शब्द तो स्वयं पद निर्माण में काम आते हैं। अब केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया संबंधी शब्द ही शेष रहते हैं, जिनमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में सुप आदि विभक्ति एवं प्रत्ययों का योग होता है, तब ये पद बनते हैं, और क्रिया शब्द में तिप, सिप, झी आदि परसर्गों का योग होता है तब ये पद बनते हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि पद के ही दो भेद होते हैं, एक तो सुबंत या नाम या संज्ञापद, दूसरे तिगंत या ख्यात या क्रियापद। पद निर्माण में प्रकृति, उपसर्ग, विकरण और प्रत्यय का महत्व। पहला, पद और प्रकृति। शब्द के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं। प्रत्येक पद का निर्माण प्रकृति में प्रत्यय विभक्ति के योग से होता है। जैसे नीम कड़वाहट के लिए प्रसिद्ध है, इस वाक्य में आए हुए कड़वाहट के लिए पद में कड़ुआ प्रकृति है, आहट प्रत्यय लगी है तथा के लिए विभक्ति है। इस प्रकार तीनों के योग से कड़वाहट के लिए पद का निर्माण हुआ है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी पद के निर्माण के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका सर्वप्रथम निर्माण प्रकृति और प्रत्यय के योग से होता है। जैसे कड़वाहट में कड़ुआ प्रकृति है और आहट प्रत्यय है तथा इन दोनों के योग से कड़वाहट शब्द बना है। ऐसे ही पीना प्रकृति और अक्कड़ प्रत्यय लगने से पियक्कड़ शब्द, गढ़ना प्रकृति और अंत प्रत्यय के योग से गढ़ंत शब्द, मैल प्रकृति और आ प्रत्यय के योग से मैला शब्द, सड़ा प्रकृति और आइंद प्रत्यय के योग से सणाइंद शब्द, खोदना प्रकृति और आई प्रत्यय के योग से खुदाई शब्द, धड़ प्रकृति और आका प्रत्यय के योग से धड़ाका शब्द, तैरना प्रकृति और आक प्रत्यय के योग से तैराक शब्द, भला प्रकृति और आई प्रत्यय के योग से भलाई शब्द, स्वामी प्रकृति और त्व प्रत्यय के योग से स्वामित्व शब्द आदि का निर्माण होता है। इससे सिद्ध है कि पद के निष्ठपन्नता के लिए सर्वप्रथम प्रकृति की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक पद के निर्माण में प्रकृति का अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि प्रकृति ही पद का मूल होती है। प्रकृति में ही अर्थवत्ता रहती है और प्रकृति के विकृत होने पर ही प्रत्येक शब्द निष्पन्न होता है। दूसरा, पद और परसर्ग। महर्षि पतंजलि ने उपसर्ग क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला कहा है। पाणिनि ने भी क्रिया के पूर्व योग से प्र, परा, अप आदि की उपसर्ग संज्ञा बतलाई है। प्रायः उपसर्ग क्रिया के पूर्व में लगते हैं, इसलिए उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। पद के निर्माण के लिए जिस प्रकार प्रकृति का महत्व है, क्योंकि उपसर्ग एक ही शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द को विभिन्न अर्थों का द्योतक बना देते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अद, निस, निर, दुर, दुस, वि, अंग, नि, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप नामक 22 उपसर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत के कुछ और भी ऐसे शब्द मिलते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे अ यानी अभाव, अधम यानी अधोगति, अंतर यानी अंतरदशा, अमा यानी अमावस्या, अलम यानी अलंकार, आविर जैसे आविर्भाव, इति जैसे इतिवृत्त, कु जैसे कुरूप, चिर यानी चिरायु, तिरस यानी तिरस्कार, न यानी नपुंसक, नाना यानी नाना रूप, पुरस यानी पुरस्कार, पुरा यानी पुरातत्व, पुनर यानी पुनर्जन्म, प्राक यानी प्राकर्थन, प्रातर यानी प्रातःकाल, प्रादुर यानी प्रादुर्भाव, बहिर्माने बहिष्कार, स माने सजीव, सत माने सत्पात्र, स माने संयोगी, स्व माने स्वदेश, स्वयं माने स्वयंवर, स्वर माने स्वरगंगा आदि। कतिपय हिंदी के उपसर्ग भी मिलते हैं, जैसे अद यानी अधपका, उन यानी 29, औ यानी अवगुण, बिन यानी बिन ब्याहा, भर माने भरपेट आदि। कतिपय उर्दू के भी उपसर्ग पद निर्माण में काम आते हैं, जैसे अल यानी अलबत्ता, एन एन वक्त, कम यानी कमजोर, खुश यानी खुशबू, गैर यानी गैर हाजिर, दर यानी दर असल, ना यानी नालायक, ब यानी बदौलत, बद यानी बदनाम, बर यानी बर्दाश्त, बा यानी बाकायदा, बिल यानी बिल्कुल, बिला माने विलाशक, बे यानी बेईमान, ला माने लवारिस, सर माने सरताज, हम यानी हमराज, हर हर रोज। ऐसे ही अंग्रेजी में भी पर्याप्त उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे आर ई री यानी रिसीव, आर ई सी आई ई वी ई, प्री पी आर ई, जैसे पी आर ई एफ आर प्रीफर, डी ई डी, जैसे डिसीव, डी ई सी आई ई वी ई, कॉन सी ओ एन, जैसे कॉन्फर यानी सी ओ एन एफ ई आर, पी ई आर पर, जैसे परसीव, पी ई आर सी ई आई वी ई, सब एस यू बी, जैसे सब इंस्पेक्टर, एस यू बी हाइफन आई एन एस पी ई सी टी ओ आर इत्यादि। इन उपसर्गों के योग से एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ का द्योतक हो जाता है, जैसे हार प्रत्यय में उपसर्ग जोड़ने से प्रहार, संहार, अनुहार, विहार, आहार, परिहार, प्रतिहार, उपहार आदि कई अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं। अंग्रेजी में ही भी सी आई ई वी ई में उपसर्ग लगा देने से रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव आदि शब्द वाले शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार उपसर्गों के योग से अनेकानेक ऐसे शब्द निष्पन्न होते हैं जो विभिन्न अर्थों के द्योतक होते हैं और मूल शब्द या प्रकृति एक ही होती है, किंतु उपसर्ग के चलते ही उसी मूल शब्द या प्रकृति से अनेकानेक शब्दों का निर्माण हो जाता है। इसीलिए शब्द एवं पद की निष्पन्नता में उपसर्गों का योग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा, पद और विकरण। विकरण से अभिप्राय उन मध्यवर्ती प्रत्ययों से है जिनके योग से शब्द एवं पद का न केवल रूप ही परिवर्तित होता है अपितु उसका अर्थ भी बदल जाता है। विकरण को ऐसे शब्द साधक प्रत्यय कहा जा सकता है जो क्रियापदों के बीच में लगते हैं, अतएव विकरण को अंतः प्रत्यय कह सकते हैं। संस्कृत के इन विकरणों के योग से गण, काल, वाच्य आदि का बोध होता है। जैसे गच्छति, युद्यते पदों में ती और ते पुरुष प्रत्यय हैं, किंतु अ और य विकरण है तथा इनके योग से गच्छति, गच्छ धन अ धन ती और युद्यते यानी युद्ध धन य धन ते पद निष्पन्न हुए हैं। संस्कृत में शप, शपो, लुक, श्लु, श्यन, श्नु, श, श्नम, उ, श्ना, यक, चलि, तासि, स्य और सिप विकरण होते हैं। हिंदी में विकरणों का प्रयोग होता है। हिंदी में वा विकरण के योग से कई ऐसे शब्द निष्पन्न होते हैं जिनका प्रयोग प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में होता है, जैसे पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, मनाना से मनवाना, हटाना से हटवाना, उठाना से उठवाना, फेंकना से फेंकवाना आदि। अतः जिस प्रकार उपसर्ग क्रिया के आदि में लगाए जाते हैं उसी प्रकार विकरणों का योग क्रिया के बीच में किया जाता है और इनके योग के कितने शब्दों में पदों का निर्माण होता है। अतः पद निष्पन्नता में विकरण का भी पर्याप्त महत्व है। चौथा, पद और प्रत्यय। प्रत्यय से तात्पर्य यहाँ उन सभी प्रत्यय एवं विभक्तियों पर सर्गों से है जो प्रकृति या धातु के अंत में जोड़ी जाती हैं और जिनके योग से ही सार्थक शब्द एवं पदों का निर्माण होता है। शब्द शक्ति प्रकाशिका में प्रत्ययों के 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में सुप और तिगंत विभक्तियां आती हैं, दूसरे भाग में रिच, सन, यंग आदि धातु के अंश आते हैं और तीसरे भाग में तद्भित, अपत्य, शैषिक, मत्वर्थक आदि प्रत्यय आती है। चौथे भाग में कृत, तव्य, अनियर, त्रिच आदि प्रत्यय आते हैं और पांचवें भाग में स्वार्थिक प्रत्यय आती है। इस तरह संस्कृत व्याकरणों में विभक्ति और प्रत्यय दोनों के लिए प्रत्यय नाम का व्यवहार होता है। इन प्रत्ययों की संख्या अत्यधिक है और इनके योग से विविध शब्द निष्पन्न होते हैं, जैसे अक से कारण, गायक, पाठक, नर्तक आदि, अन से मोहन, साधन, पालन, पावन आदि, अना से तुलना, रचना, प्रार्थना, भावना आदि, अनीय से दर्शनीय, आदरणीय, शोचनीय, माननीय आदि, आलु से दयालु, कृपालु आदि, ता से दाता, नेता, श्रोता, भर्ता आदि, तव्य से कर्तव्य, ज्ञानतव्य, वक्तव्य, द्रष्टव्य आदि, य से त्याज्य, बध्य, देय, सह्य आदि शब्द निष्पन्न होते हैं। हिंदी में प्रत्ययों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, तत्संपर्सर्ग, जो प्रत्यय सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं और कृदंत, तद्धित आदि कहलाते हैं, जैसे ईष्णु यानी सहिष्णु, तव्य यानी भवितव्य, मत यानी श्रीमत, मात्र यानी क्षण मात्र आदि। दूसरा, तद्भव्यादेशी प्रत्यय, जो प्रत्यय या तो संस्कृत के तत्सम प्रत्ययों से बने हैं या देशज हैं, जैसे अंत यानी रटंत, आटा यानी सन्नाटा, आन यानी उठान, आयत यानी पंचायत, आड़ी यानी खिलाड़ी, आहट यानी घबराहट आदि। तीसरा, विदेशी प्रत्यय, जो प्रत्यय अरबी, फारसी या अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे ई, नवाबी, दोस्ती, कार यानी जैसे पेशकार, दान यानी चायदान, दानी यानी गुणदानी, वान यानी बागवान, आना यानी जैसे सहियाना, खाना यानी छापखाना, डाकखाना, खोर यानी चुगलखोर, सूदखोर, गिरी यानी बाबूगिरी, गरीब यानी कारीगरी, ची माने देगची, बगीची, बाज माने दगाबाज, बाजी माने पतंगबाजी, डम यानी गुरुडम, एक्शन यानी गड़बड़ेशन आदि। इस प्रकार शब्द एवं पदों की निष्पन्नता में प्रत्यय का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योग रहता है, क्योंकि ये पृथक रहकर तो किसी प्रकार का अर्थबोध नहीं कराते, किंतु किसी क्रिया या शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द या पद को महत्वपूर्ण अर्थ संपन्न कर देते हैं।